पैनियम नंबर 5।
तेरी प्रजा के लुटेरे, भविष्यवाणी में रोम का उत्थान और पतन।
दानियल की पुस्तक एक अद्भुत भविष्यवाणी मूलक वृत्तांत उद्घाटित करती है, जो इसके दर्शनों में दोहराने और विस्तार करने के सिद्धांत को पिरोती है। अध्याय 2 की धातु की प्रतिमा से लेकर अध्याय 11 के राजाओं के जटिल संघर्षों तक इसी रूपरेखा में एक सशक्त तर्क उभरता है। 31 ईसा पूर्व की एक्टियम की लड़ाई, जो 30 ईसा पूर्व में मिस्र के पतन पर समाप्त हुई, दानियल 11:25-26 की राजाओं के समापित निन्यायक पूर्ति के रूप में स्थापित होती है और मूर्ति पूजक रोम के 386 वर्षीय प्रभुत्व के आरंभ को चिन्हित करती है। दानियल 11 की शुरुआत 333 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु के बाद साम्राज्यों के उत्थान और पतन से होती है, परंतु पद 14 तक पहुँचते पहुँचते एक बदलाव आता है। लगभग 200 ईसा पूर्व, जब एंटियोकस तृतीय मैग्नस बाल राजा टॉलमी पंचम के विरुद्ध पानियम के युद्ध की तैयारी कर रहा था, तब रोम ने हस्तक्षेप किया, सिर्फ दर्शक भर के रूप में नहीं बल्कि तेरे लोगों के लुटेरों के रूप में। हेलेनिस्टिक उथल पुथल के बीच मिस्र की गेहूं आपूर्ति को सुरक्षित करने की चिंता में रोम ने द्वितीय मकदूनिया युद्ध 290 ईसा पूर्व के दौरान अपना प्रभाव दिखाया और अपनी भविष्यवाणी संबंधी भूमिका के लिए मंच तैयार किया।
रोम का यहूदियों पर प्रभुत्व।
अब सीधे 363 ईसा पूर्व पर आते हैं और पद 16 की पूर्ति तब होती दिखाई देती है जब पोम्पे यरूशलेम पर धावा बोलता है, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है और महिमामय देश पर रोमी प्रभुत्व स्थापित करता है। यहां से पद 17-22 तक रोमी व्यक्तियों की एक क्रमिक शक्ति का पता चलता है। पोम्पे के नामों को पूर्वी अभियान जूलियस सीजर की विजय आए और 44 ईसा पूर्व उसकी हत्या, ऑगस्टस सीजर का कर वृद्धि वाला शासन लूका 2 इतंग में उल्लिखित, जो 14 ईस्वी में समाप्त हुआ, और टाइबेरियस के शासनकाल में 31 ईस्वी में मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, जब वाचा का प्रधान तोड़ा गया। यरूशलेम में पोम्पेई से लेकर 70 ईस्वी में यरूशलेम में टाइटस तक की भविष्यवाणी की ये कड़ी परमेश्वर की प्रजा पर रोम के प्रभुत्व की रेखा को दर्शाती है। आरंभ एक रोमी सेनापति द्वारा मंदिर का अपवित्रीकरण करने से होता है और अंत एक रोमी सेनापति द्वारा मंदिर के विनाश पर होता है। ये अल्फा और ओमेगा की मुहर दर्शाता है। अपवित्रीकरण से शुरू होकर विनाश पर समाप्त होने वाली ये ऐतिहासिक रेखा उसके साथ हुए अपवित्रीकरण और विनाश को भी समेटती है, जिसने अपने विषय में कहा था, इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में मैं इसे फिर खड़ा कर दूंगा। सत्य इब्रानी वर्णमाला के प्रथम 13वें और अंतिम अक्षर से बना है और पोम्पे से आरंभ होकर टाइटस पर समाप्त होने वाली ये रेखा बीच के एक मंदिर विनाश को भी शामिल करती है, जिसका प्रतिनिधित्व 3 क्रूसों के मध्य वाले क्रूस द्वारा होता है, जो उस सप्ताह के बिल्कुल मध्य में खड़े किए गए थे जब मसीह वाचा की पुष्टि करने आए थे। पद 16-22 तक एक ऐसी भविष्य सूचक रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सत्य की मोहर लिए हुए है। इन पदों द्वारा प्रस्तुत इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण भविष्य सूचक रेखाएं हैं, परंतु इस रेखा का मुख्य विषय यहूदियों पर रोम का आधिपत्य है।
संघ और संधियां।
पद 23 दोहराता और तिस्तार करता है 60,116-158 ईसा पूर्व पर लौटते हुए, जब यहूदा मक्कबी के नेतृत्व में यहूदियों ने रोम से गठबंधन किया। 1 मक्कबियों 8। ये रोम की विशिष्ट साम्राज्य निर्माण रणनीति को उजागर करता है, संधियों और गठबंधनों के माध्यम से विजय जो उसके पूर्ववर्तियों से भिन्न थी। पद 24 इस चरण का निष्कर्ष करता है, ये उल्लेख करते हुए कि रोम अपने गढ़ों से अपनी युक्तियों की योजना बनाएगा एक समय तक,
और उसके साथ संधि हो जाने के बाद वो छल से काम करेगा, क्योंकि वो उठ खड़ा होगा और थोड़े लोगों के साथ बलवंत हो जाएगा। वो प्रांत के सबसे समृद्ध स्थानों में भी शांति से प्रवेश करेगा और वो हो करेगा जो उसके पिताओं ने नहीं किया, न ही उसके पत्रों के पिताओं ने। वो उनके बीच लूट का माल, लूट की वस्तुएं और धन संपत्ति बांट देगा। हाँ, वो कुछ समय तक दुर्गों के विरुद्ध अपनी युक्तियां भी रचेगा। दानियल 11:23-24।
कुछ समय के लिए।
अगेंस्ट के रूप में अनुदित शब्द को फ्रॉम के रूप में समझा जा सकता है। रोम अपनी युक्तियों का पूर्वानुमान फ्रॉम से करता है। पद में फ्रॉम शब्द रोम नगर, जो साम्राज्य का राजनीतिक और सैन्य हृदय है, की ओर संकेत करता है और बताता है कि वही उसकी रणनीतियों का आधार स्थल है। समय भविष्यवाणी के अनुसार 360 वर्ष है, जिसकी शुरुआत एक्टियम के बाद 30 ईसा पूर्व मिस्र के पतन से होती है और इसका अंत 383 ईस्वी में तब होता है जब कॉन्स्टेंटीन रोम को छोड़कर कॉन्स्टेंटिनोपल चला जाता है। श्लोक 25 और 26 सीधे एक्टियम पर ही केंद्रित है।
और वो दक्षिण के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना के साथ अपनी शक्ति और साहस को भड़काएगा और दक्षिण का राजा अति बड़ी और पराक्रमी सेना के साथ युद्ध के लिए उकसाया जाएगा, परंतु वो ठहर न सकेगा क्योंकि वे उसके विरुद्ध युक्तियां रचेंगे। हाँ, जो उसके भोजन के भाग से खाते हैं वे ही उसे नाश करेंगे और उसकी सेना बह जाएगी और बहुत से मारे जाकर गिरेंगे। दानियल 11:25-26।
31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने रोम के प्रतिनिधि ऑफ कार्टली, उत्तर के राजा के रूप में क्लियोपेट्रा के मिस्टर, दक्षिण के राजा के विरुद्ध एक वीरत नौसैनिक संघर्ष में अपनी सैनिक उतार दीन। एंटनी और क्लियोपेट्रा की अत्यंत बड़ी और शक्तिशाली सेना डगमगा गई। रणनीतिक युक्तियों, अग्रिपा की रणनीतियों और विश्वासघात, एंटनी के सहयोगियों के दल बदल तथा क्लियोपेट्रा के युद्ध के बीच में पीछे हटने से वो परास्त हो गए। 30 ईसा पूर्व तक मिस्टर एक रोमन प्रांस बन चुका था, जिससे मूर्तिपूर जक रोम का निर्विवाद शासन शुरू हुआ। 36 ईसा पूर्व से 333 तक की ये 360 वर्षीय अवधि रोम की सर्वोच्चता से मेल खाती है, जो उसके मूल गार्ड में केंद्रित थी। तब तक जब तक कॉन्स्टेंटाइन के स्थानांतर ने सिमपगाज उस गार्ड का नीचे गिरा न दिया, जैसे कि दानियल 18:11 में पूर्व का तस्वीर है।
उसने अपने आप को सेनाओं के प्रधान तक महान बना लिया और उसके द्वारा नित्य बलि छीन ली गई और उसके पवित्र स्थान का स्थान गिरा दिया गया। दानियल 8:16।
जब कॉन्स्टेंटाइन ने रोम नगर को त्याग कर कॉन्स्टेंटिनोपल नगर को अपनाया तो उसने रोम में सत्ता का शून्य छोड़ दिया, जिससे पोप की कलीसिया के लिए रोम नगर द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले सत्ता के सिंहासन पर बैठने का अवसर खुल गया। इस कार्य ने प्रकाशित वाक्य 13 के पद 2 को पूरा किया।
और जिस पशु को मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के पांव के समान थे और उसका मुंह सिंह के मुंह के जैसा था, और अजगर ने उसे अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार दिया। प्रकाशित वाक्य 13:2।
दानियल 8 में पवित्र स्थान के रूप में अनुदित दो भिन्न हिब्रानी शब्द दानियल की पुस्तक में पवित्र स्थान की कथा में भेद स्पष्ट करते हैं। दानियल की पुस्तक मसीह और शैतान के बीच होने वाले युद्ध को दिखाती है, जिसे मसीह और शैतान के पृथ्वी पर के प्रतिनिधियों के माध्यम से चित्रित किया गया है। दानियल की पुस्तक के आरंभ में शैतान के पृथ्वी पर के प्रतिनिधि बाबुल ने यरूशलेम पर विजय पाई और 11वें अध्याय के पद 45 में यरूशलेम बाबुल पर विजय पाता है। यरूशलेम और बाबुल के नगर द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज शक्ति के पवित्र स्थान है। बाबुल और यरूशलेम के नगर दोनों ही शक्ति के पवित्र स्थान है और दोनों के अपने अपने मंदिर नगर के भीतर हैं। पैंथियन मंदिर रोम नगर में है और भविष्यद्वाणी के कथानक में यरूशलेम का मंदिर उसका समकक्ष है। बाबुल और रोम यरूशलेम के नकली प्रतिरूप है।
दानियल 8 में दो इब्रानी शब्द आते हैं। पद 11 में मिकदाश, जहां छोटा सींग मूर्तिपुज हूचक रोम 330 में कॉन्स्टेंटाइन के स्थानांतरित होने पर उसके पवित्र स्थान का स्थान रोम नगर को गिरा देता है। दूसरा शब्द खोदेश पद 13 और 14 में है, जहां 2300 दिनों के बाद परमेश्वर का पवित्र स्थान शुद्धिकरण की प्रतीक्षा करता है। यद्यपि दोनों शब्दों का अनुवाद पवित्र स्थान के रूप में किया गया है, मिकदाश ईश्वर के दुर्ग या किसी मूर्ति पूजक दुर्ग दोनों का द्योतक हो सकता है, जबकि खोदेश बाइबल में केवल परमेश्वर के पवित्र स्थान के लिए ही प्रयुक्त होता है।
दानियल 11 तक तीर का और शक्ति का पवित्र स्थान रोम नगर अपवित्र हो जाता है,
क्योंकि बर्बर जातियां और वैंडल रोम नगर में युद्ध ले आते हैं। उस पद में सैन्य बल की शुरुआत 427 में क्लोविस से हुई और ये तब तक चलता रहा जब तक 592 में पापाई रोम पूरी तरह प्रभुत्वशाली नहीं हो गया, जब ओस्ट्रोगोथों को नगर से निकाल दिया गया। एक्टियम से आरंभ भम्स हिमसूचक धारा 330 के बाद तक विस्तृत रहती है। पद 30 के कितीम के जहाज जेंसेरिक के अधीन वैंडलों की ओर संकेत करते हैं, जिन्होंने 455 में रोम को लूटा, जो पश्चिमी रोम के पतन का संकेत था। इसके बाद पापाई रोम उभरता है और 533 से 91 तक कुल 899 वर्षों तक शासन करता है। जब नेपोलियन के जनरल बर्तिये ने पायस षष्ठम को पकड़ कर उसे घातक घाव दिया, 30 ईसा पूर्व से 330 तक के बहुदेववादी रोम के 390 वर्षों पापाई रोम के 296 वर्षों का प्रतिबिंब है। दोनों की शुरुआत तब होती है जब तीसरी बाधा मिस्र ऑस्ट्रोगोथ गिरती है। आधुनिक उत्तर का राजा पद 40 में प्रकट होता है। 1989 में पापाई सत्ता रीगन के नेतृत्व वाले अमेरिका के साथ गुप्त रूप से मिली हुई, जिसका प्रतीक रथ, जहाज और घुड़सवार है। सोवियत संघ USSR, जो दक्षिण का राजा नास्तिकता साम्यवाद है, को उखाड़ फेंकती है। पद 41 पापाई सत्ता की महिमामय देश पर विजय प्रोटेस्टेंट अमेरिका को कैथोलिक अमेरिका में बदलते हुए को दर्शाता है, जबकि पद 40-43 बताते हैं कि मिस्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया संयुक्त राष्ट्र एक त्रिगुट के आगे झुक जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अजगर वै टिकिन पशु और संयुक्त राज्य झूठा भविष्यवक्ता शामिल है, जो संसार को हर्मगिदोन की ओर ले जाता है। पद 45 इस शक्ति के अंत की भविष्यवाणी करता है, जिसकी सहायता करने वाला कोई न होगा। उसका घाव पद 41 में भर जाता है, पर उसका भाग्य पद 45 द्वारा मोहर बंद हो जाता है। 31 ईसा पूर्व का एक्टियम पद 25 और 26 का केंद्र है, जो रोम के पवित्र स्थान दुर्ग से उसके 367 वर्षीय शासन की शुरुआत करता है। पद 14 को एक सावधानी के रूप में मानते हुए पद 16 से लेकर पद 21 में पापीय रोम में संक्रमण तक मूर्ति पूजक रोम की कथा मूर्ति पूजक रोम का पूरा क्रम प्रस्तुत करती है। उस क्रम को तीन भागों में बांटा गया है। पद 16 से 22 प्राचीन इसराइल पर रोम के प्रभुत्व का वर्णन है। पद 23 और 24 उस साम्राज्य निर्माण के कार्य की पहचान करते हैं, जिसका उपयोग रोम ने गठबंधनों और संधियों के माध्यम से सैन्य शक्ति के साथ मिलाकर विजय प्राप्त करते समय किया। पद 24 से लेकर पद 21 के अंतिम वाक्यांश तक एक दो भागीय क्रम है, जो उस काल का नाम प्रतिनिधित्व करता है जब रोम ने स्वयं को ऊंचा उठाया और उसके बाद उसका पतन हुआ। नियत समय वर्ष 343 में 307 वर्षों की अवधि का समापन है। पद 27 से लेकर पद 31 के अंतिम वाक्यांश तक, जो ये बताता है कि 538 में पोपीय सत्ता, जिसे उजाड़ करने वाली घृणित वस्तु के रूप में दर्शाया गया है, सिंहासन पर स्थापित की गई थी। मूर्ति पूजक रोम का वो इतिहास है जो सर्वोच्च शासन के 360 वर्षों की अवधि के संदर्भ में है, जिसके बाद 208 वर्षों का क्रमिक पतन होता है। इसलिए 24वें पद का समय 31 ईसा पूर्व में शुरू होता है, जब उत्तर के राजा के राज्य क्षेत्र में दक्षिण के राजा का समावेश होता है, और ये 333 में उत्तर के राजा का पूर्व और पश्चिम में विभाजन होने पर समाप्त होता है। 333 से औरपाथ्रत्तिक मूर्त पूजक रोम क्रमशः बिखरता जाता है। मूर्त पूजक रोम के पतन के विभिन्न चरणों से जुड़ी विभिन्न भविष्य सूचक पहचाने वे भविष्यवाणी के आधार बिंदु हैं, जो भविष्यवाणी के विद्यार्थी को परमेश्वर के भविष्यवाणी वचन को पहचानने में सहायता करती हैं। दानियल अध्याय 11 के 14वें पद की पूर्ति में रोम दर्शन को स्थापित करता है, और वो ये कार्य अपने पतन के माध्यम से भी करता है। वो पद कहता है, तेरे लोगों के लुटेरे भी दर्शन को स्थापित करने के लिए अपने आप को ऊंचा उठाएंगे, परंतु वे गिर पड़ेंगे। जब रोम पर चित्तिन के जहाजों द्वारा हमला होता है और उसके बाद वो दक्षिण पर आक्रमण करता है, तो ये न तो पहले जैसा था और न ही बाद वाला। क्योंकि यहीं से आगे रोमी सत्ता के पतन का चित्रण किया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 8 में पाए जाने वाली 7 तुरहियों में से पहली 4 तुरहियां विशेष रूप से उन 4 प्रमुख शक्तियों का वर्णन करती हैं जिन्होंने अंततः 76 तक पश्चिमी रोम का अंत कर दिया। दर्शन तब स्थापित होता है जब 13 लोगों के लुटेरे अपने को ऊंचा उठाते हैं और गिरते हैं। यह भविष्यदर्शी दर्शन रोम के पतन के ढांचे पर चित्रित किया गया है। पश्चिमी मूर्ति पूजक रोम का पतन 330 से 578 तक हुआ। पापाई रोम का पतन 1798 में हुआ। पांचवीं और छठी तुरही के इतिहास में पूर्वी रोम 4500 निहा ओटोमन तुर्कों के हाथों गिर गया। ये तीनों पतन उस दर्शन का हिस्सा का जो 13 लोगों के लुटेरों द्वारा स्थापित किया गया है। पद कहता है, और 13 लोगों के लुटेरे दर्शन को स्थापित करने के लिए अपने आप को ऊंचा करेंगे, परंतु वे गिर पड़ेंगे। 31 ईसा पूर्व से 330 तक मूर्ति पूजक रोम ने संसार पर अपनी प्रभुता में अपने आप को ऊंचा किया। 330 से 538 तक मूर्ति पूजक रोम ढल गया ताकि पाप का मनुष्य परमेश्वर के मंदिर में बैठ सके और अपने आप को परमेश्वर घोषित करे। 538 से 1798 तक पोप सत्ता ने अपने आप को ऊंचा किया और 1798 में वे गिर पड़े। 31 ईसा पूर्व से 330 तक पश्चिमी रोम ने ये कहकर अपने को ऊंचा किया कि वही रोमी साम्राज्य का केंद्र है, और 330 से 176 तक वो गिर गया। 330 में कॉन्स्टेंटाइन ने यह घोषित किया कि कॉन्स्टेंटिनोपल पूर्वी रोम का केंद्र है, और 1516-3 पूर्वी रोम गिर पड़ा। रोम के विभिन्न रूपों की अवधियों में प्रत्येक में एक समय ऐसा है जब रोम अपने को ऊंचा करता है, और उसके बाद उसका पतन दिखाने वाला समय आता है, क्योंकि 13 लोगों के लुटेरे दर्शन को स्थापित करने के लिए अपने आप को ऊंचा करेंगे, परंतु वे गिर पड़ेंगे। जिस हिब्रू शब्द का अनुवाद रॉबर्ट्स किया गया है उसका बेहतर अनुवाद ब्रेकर्स है, क्योंकि ये मूल अर्थ भेद कर तोड़ना या विघ्न डालना से अधिक मेल खाता है, न कि सख्ती से रॉबर्ट्स जो चोरी का संकेत देता है से। ये शब्द उन लोगों का संकेत देता है जो सीमाओं, कानूनों या वाचाओं को तोड़ते भंग करते हैं, केवल वस्तुएं चुराते नहीं। बाइबल की भविष्यवाणी में रोम ब्रेकर है, यद्यपि पद 14 में इसका अनुवाद रॉबर्ट्स किया गया है। दानियेल अध्याय 2 में रोम लोहे का राज्य है, और अध्याय 7 में चौथा पशु भी रोम ही है।
इसके बाद मैंने रात के दर्शन में देखा, और देखो एक चौथा पशु भयानक और भयंकर और अत्यंत शक्तिशाली। उसके बड़े लोहे के दांत थे। वो गलल जाता और टुकड़े टुकड़े कर देता, और जो अवशेष बचता उसे अपने पैरों से रौंद डालता। और वो उन सब पशुओं से भिन्न था जो उससे पहले थे, और उसके 10 सींग थे। दानियेल 7:7।
चौथे पशु जो रोम है के लोहे के दांत है, क्योंकि ये वही चौथा राज्य है जिसे दूसरे अध्याय में लोहे के रूप में दर्शाया गया है। 7वें पद में रोम का चौथा पशु टुकड़े टुकड़े करता है, और जब वो टुकड़े टुकड़े करता है तो उसने अवशेष को अपने पैरों से रौंद कर दिया। रोम का पशु लोहे का राज्य है, और टुकड़े टुकड़े करना तथा अवशेष को रौंदना, ये विशेषताएं उत्पीड़न के कार्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राचीन इसराइल पर लाया गया उत्पीड़न एक चिन्ह था।
और ये सब शाप तुझ पर आएंगे और तेरा पीछा करेंगे और तुझे पकड़ लेंगे जब तक कि तू नष्ट न हो जाए, क्योंकि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी न सुनी ताकि उन आज्ञाओं और विधियों को माने जो उसने तुझे दी थी। और वे तेरे ऊपर चिन्ह और आश्चर्य के रूप में होंगे और तेरे वंश पर सदा के लिए, क्योंकि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा हर्ष और मन की प्रसन्नता से सब वस्तुओं की बहुतायत में नहीं की। इस कारण तू अपने शत्रुओं की सेवा करेगा जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, भूख में, प्यास में, नग्नता में और हर एक वस्तु की कमी में, और वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ रखेगा जब तक वो तुझे नाश न कर दे। यहोवा दूर से पृथ्वी के छोर से तेरे विरुद्ध एक जाति को ले आएगा, जैसे उकाब उड़ता है वैसे ही तीव्र, ऐसी जाति जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा, कठोर मुख मुद्रा वाली ऐसी जाति जो बूढ़ों का आदर न करेगी और युवकों पर कृपा न करेगी, व्यवस्था विवरण 28:45-50।
उनके विद्रोह के कारण प्राचीन इज़राइल पर आए अभिशाप चिन्ह और आश्चर्य है और तेरे वंश पर सदा तक। ये अभिशाप उन पर कठोर मुख वाला एक राष्ट्र द्वारा लाया जाना था। 7वें अध्याय में लोहे के दांतों वाला वो पशु जो टुकड़े टुकड़े करता है और अवशेष को रौंदता है, वही 4था राज्य भी है जो सिकंदर के राज्य के विभाजन से उत्पन्न होता है। और जैसा मूसा ने व्यवस्था विवरण में कहा, वैसा ही वो राज्य एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी भाषा प्राचीन इज़राइल नहीं समझता था। दानियल के 8वें अध्याय में रोम का राज्य कठोर मुख वाला राष्ट्र है और ऐसा राष्ट्र है जो भिन्न भाषा बोलता है।
अब उसके टूट जाने पर और उसके स्थान पर 4 के उठ खड़े होने से उस राष्ट्र में से 4 राज्य उठेंगे, परंतु उसकी शक्ति के समान नहीं। और उनके राज्य के अंतकाल में जब अपराधियों की अधर्मता परिपूर्ण हो जाएगी, तब कठोर मुख वाला और गूढ़ बातों को समझने वाला एक राजा उठ खड़ा होगा। दानियल 8:22-33।
तेरे लोगों के लुटेरे तोड़ने वाले दर्शन को स्थापित करते हैं, वे स्वयं को ऊंचा उठाते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। 4था लोहे का राज्य मूर्तिपूजक रोम था, जिसने स्वयं को ऊंचा उठाते हुए पूर्ण प्रभुत्व के साथ शासन किया, परंतु जिसका अंतिम पतन एक भविष्य सूचक विशेषता बन गया जो उस दर्शन को स्थापित करती है। वे तोड़ने वाले हैं क्योंकि वे उत्पीड़न के द्वारा परमेश्वर की प्रजा को रौंदते हैं।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।